તારીખ 7/4/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 472
પ્રકાશિત ક્યા હૈ આખિર મેં લિખતે હૈ કે પ્રસંગ સે કુછ પરસ્પર કે સંબંધ જૈસે વચન ઇસ પત્ર મેં લિખે હૈ વે વચન विचार में स्फुरित हो आने से स्व विचार बल बढ़ने के लिए और आपको पढ़ने विचारने के लिए लिखे हैं। तो पत्र लिखने का हेतु है तो प्रसिद्ध किया है यहाँ आत्मविचार बल बढ़ने के लिए। स्व विचार मैंने आत्मविचार, आत्मविचार माने आत्मकल्याण का विचार, आत्मकल्याण का विचार प्राय मनुष्य को आता है परंतु उसका विचार बल नहीं होने से उसका अमलीकरण नहीं होता है। विचार होना एक बात है और विचार का अमल होना तो दूसरी बात है। विचारों का अमल कब होता है? फिर जब विचार बलवान होता है तब होता है। तो विचार बल कैसे हो इसका यहाँ कुछ उपदेश दिखा है तो काफी समझने योग्य है। सबसे पहले लिखते हैं कि सर्व क्लेश से और सर्व दुख से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान है। संसार के सर्व प्रकार के क्लेश से और संसार के सर्व प्रकार से दुख से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है। जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है वह जीव संसार में कभी दुखी नहीं होता। वैसे ही दुख कुछ पदार्थ में से नहीं आता और सुख भी कोई पदार्थ में से तो नहीं आता। सुख दुख बाह्य पदार्थ में से आता नहीं, लेकिन संसार में सुख दुख विषय जीव की कल्पना हुआ करती है। ऐसी परिस्थिति में दुखी मैं दुखी हूँ और ऐसी परिस्थिति में मैं सुखी हूँ। यहाँ तो कहते हैं कि सभी प्रकार से के दुख से मुक्त होने का एक ही उपाय है और वही उपाय एक आत्मज्ञान की प्राप्ति करना वही है। तो फिर आत्मज्ञान का मूल्य कितना? जिस आत्मज्ञान से हमको सभी प्रकार का दुख का अभाव हो जाए, किसी भी प्रकार का दुख का अनुभव न हो, ऐसी चीज का मूल्य कितना? ऐसी ऐसी चीज तो कहीं मिलेगी नहीं। संसार में ऐसे ऐसे दुख होते हैं कि जिसका कोई इलाज ही नहीं होता, न दवाई से मिटता है न किसी भी प्रकार से दुख मिटता है। ऐसे सभी प्रकार के दुख आत्मज्ञान के कारण से मिट जाता है। यही कारण है इसका कि आत्मा में जो अनंत सुख भरा है यह सुख आत्मज्ञान होने से प्रत्यक्ष रूप में अनुभव में आता है, अंदर से सुख अनुभव में आता है। हर हालत में यह सुख का अनुभव बना रहता है, इसलिए कहीं भी दुख का अनुभव नहीं होता है। ज्ञानियों के अनेक प्रसिद्ध वचन इस विषय में है कि बाहिर नारक कृतक दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटे। मुझे सम्यक दृष्टि की रीति लगी है अटापति, मृगधारी की रीति मुही लगी है, मुही लगी है अटापति। जब नरक के दुख भी वहां नहीं लगते हैं तो और कौन से दुख लगते होंगे? आत्मज्ञानी को कहीं भी दुख नहीं होता है। ऐसा आत्मज्ञान विचार के बिना नहीं होता। कौन से विचार के बिना? कि आत्मकल्याण के विचार बिना आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मकल्याण के दृढ़ विचार जिसके होते हैं कि मुझे आत्मकल्याण कर लेना ही है, ऐसी दृढ़ता जिसको आती है उनको अवश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी एक न्याय से आत्मज्ञान की पूर्व भूमिका कैसी होती है कि आत्मज्ञान की पूर्व भूमिका आत्मकल्याण के मजबूत विचारों वाली होती है। जिसने अपना आत्मकल्याण दृढ़ता से चाहा उतना नहीं, चाहने में दृढ़ता रही जिसको, तो उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है अवश्य अवश्य। और उसका संसार का सर्व दुख है, सर्व क्लेश है, उसका नाश होता है। और असत्संग और असत प्रसंग से जीव का विचार बल प्रवर्त नहीं होता। असत्संग किसको कहें? एक एक शब्द में बहुत बातें भरी है कि सत्संग के सिवा जितना भी संग है वह असत्संग है। क्या? सत्संग को छोड़ करके संसार में जितने भी संग होते हैं वो असत्संग है। और असत्संग के कारण से, यानी असत्संग में रुचि होने के कारण से आत्मकल्याण का विचार होता है तो भी विचार बल नहीं होता। विचार होना एक बात है और विचार बल होना दूसरी बात है। ऐसे तो धर्म के क्षेत्र में आएंगे तो सभी कहेंगे कि हमको तो आत्मा का कल्याण करना है इसलिए तो आते हैं इधर, हमारा विचार तो सही है। लेकिन विचार के साथ विचार बल नहीं होता। विचार को, विचार का अमल करने में जो विचार बल चाहिए वो बल नहीं होता है। शास्त्र भाषा में उसको संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जैसे मुमुक्षु की भूमिका में आत्मकल्याण का विचार होता है और तत्व ज्ञान की प्रवृत्ति भी करता है और अनेक प्रकार का उपदेश भी उनको मिलता है। लेकिन उस उपदेश को परिणमन होने में जो बल चाहिए वो बल संवेद के अभाव से वो बल नहीं है। और बल नहीं है तो काम नहीं होता है। क्या? बल नहीं है तो काम नहीं होता है। और बल क्यों नहीं है? कि असत्संग के कारण से नहीं है। सत्संग सारे दिन में घंटा दो घंटा मिलता है, बाकी असत्संग में जीव रहता है और जीव में जैसे संयोग होते हैं उनके असर परिणामों पर आए बिना नहीं रहते। या श्रीमद् जी की भाषा में कहें तो जगत के जीव निमित्तवासी है। कैसे हैं? निमित्तवासी हैं। निमित्तवासी मैंने क्या कि जिन जिन निमित्तों का यह संग करता है उसकी असर वो लिए बिना नहीं रहता। प्रवचन सार में संस्कार नय बताया है। संस्कार नय से यह जीव अपने संयोग की असर लेने वाला है, संयोग का संस्कार लेने वाला है। तो जीव का परिणाम का स्वभाव है, धर्म है, स्वभाव है मैंने परिणाम धर्म है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि वो विवेक करे कि हमको किसके संग में रहना है। ज्ञानी तो हमेशा विवेक करते ही है, मुमुक्षु को भी विवेक होना चाहिए कि हमें सत्संग में रहना है, हमें असत्संग में नहीं रहना है। ऐसा विवेक मुमुक्षु को होना चाहिए। क्यों? कि असत्संग के कारण से जीव का आत्मकल्याण का विचार बल प्रवृत्त नहीं होता, वो विचार बल की प्रवृत्ति नहीं होती। उसमें मुख्य कारण असत्संग है। असत्संग भी है और दुनियादारी के जितने भी प्रसंग है वो असत प्रसंग है, सत प्रसंग नहीं है। मैंने आत्मा के लायक प्रसंग नहीं है, इसलिए सभी प्रसंग को असत प्रसंग कहने में आता है। चाहे ये प्रसंग सामाजिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे कुटुंबिक हो, चाहे नाच जात का हो, के सभी प्रकार के प्रसंग असत प्रसंग है। कैसे है? असत प्रसंग है। और ऐसे प्रसंगों में रुचि रखने से जीव की आत्मकल्याण की रुचि है उसका खून हो जाता है। यानी आत्मकल्याण का विचार है उसका विचार बल टूट जाता है। इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। ऐसा जो सिद्धांत प्रतिपादन किया उसमें किंचित मात्र संशय करने योग्य नहीं है। संशय करना करने के वहां विलय नहीं है, ऐसा ही होगा। असत्संग के कारण से और असत प्रसंग के कारण से जीव का आत्मकल्याण का विचार बल में प्रवृत्ति नहीं होगी। विचार होगा तो भी विचार बल नहीं होगा। इसलिए कहेंगे कि इसको मिटाना है। आगे कहते हैं कि कैसे मिटाया जाए, ऐसा असत्संग और असत प्रसंग कैसे मिटाया जाए। कि सबसे प्रथम तो आरंभ परिग्रह की अल्पता करने से असत प्रसंग बल घटता है। जिसको आरंभ परिग्रह ज्यादा है उनको संसारियों के अनेक प्रसंग में अपना या अपना स्टेटस निभाने के कारण से उसको शामिल होना पड़ता है। जो भी संसार में आरंभ परिग्रह वाले लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, हमारे इतने संबंध है, इतने संबंध है कि रोज कहीं न कहीं हमें जाना पड़ता है। क्या करें, संबंध तो निभाना पड़ता है ना। तो कहते हैं कि आरंभ परिग्रह की अल्पता कर लेनी चाहिए। यानी जिसको आत्मकल्याण करना है उनको जिसको भी आत्म कल्याण करना है उसको ये पहला विचार आता है कि मेरे जितने भी संबंध है उतना मेरा असत प्रसंग है, इसलिए मेरे जितने संबंध कम हो जाए उतना अच्छा है। संसार में उल्टी बात होती है, लोग संबंध बढ़ाते हैं और संबंध बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अजमाइश करते हैं। कोई क्लब में जाते हैं, कोई सामाजिक फंक्शन में जाते हैं और नए नए संबंध बढ़ाते हैं। क्यों? ये संबंध काम में आते हैं। संसार के कार्य निपटाने में जितना संबंध ज्यादा उतना हमारा काम सरल और आसान होता है। तो संसार में तो लोग संबंध बढ़ाने का प्रयास करता है, जबकि मोक्ष में जाने वाला मोक्षार्थी और आत्मार्थी, जिसको मात्र आत्मकल्याण का ही प्रयोजन है, ऐसा आत्मार्थी जीव संबंध की कटौती करता है। संबंध है उसको भी वो काटता है, पर संबंध काटना बहुत आसान है। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे पास कोई नहीं आएंगे। लोग कैसे कहते हैं, देखो भाई वो तो आते नहीं है, हम भी क्यों जाएंगे, वो नहीं आते तो हम क्या क्यों जाएंगे। व्यवहार तो आपस में आने जाने से रहता है या निभाने का होता है। जब उन्होंने आने जाने का बंद कर दिया तो हमने भी बंद कर दिया, चलो। और जितना संबंध कम हो गया उतना असुख प्रसंग भी कम हो गया। देखो भाई, हमारे लड़के की शादी में गया, लड़के की शादी में वो नहीं आए तो हम भी क्यों जाएंगे। अच्छी बात है क्या? ठीक बात है, अच्छी बात है क्या? हमारे सगे संबंधी हमारे साथ का व्यवहार कम कर दें, ये बात अच्छी है या बुरी है? कि वो असत प्रसंग मिटता है, जितना संबंध कम होता है उतना असत प्रसंग मिटता है, इसलिए अच्छी ही है। मतलब लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक प्रसंगों में जाया करो, बहुत परिचय बढ़ेगा, बहुत संबंध बढ़ेगा और काम में भी आएगा। क्या काम में आएगा? संसार बढ़ाने के काम में आएगा, परिभ्रमण बढ़ाने के काम में आएगा। बाकी तो पूर्व कर्म अनुसार सब चीज बनती है, प्रारब्ध को कोई मिटा सकते नहीं है। इसलिए भाई से भी संबंध बढ़ाना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार के भाई से भी संबंध बढ़ाना अच्छा नहीं है। क्या कहा? आरंभ परिग्रह की अल्पता करने से असत प्रसंग का बल घटता है, मैंने असत प्रसंग का घिरावा कम होता है और सत्संग के आश्रय से असत्संग का बल घटता है। दोनों का इलाज बताया है। पहला तो वो किया करो कि असत प्रसंग में शामिल मत हो, तो उसके लिए आरंभ परिग्रह अल्प करना अच्छा है। जितना आरंभ परिग्रह बढ़ाने का भाव है उतना असत प्रसंग बढ़ने का प्रसंग आएगा और आएगा। पर ये तो आसानी से समझ में आ सके ऐसी बात है कि हमारा जितना व्यवसाय बढ़ता है उतना आरंभ परिग्रह बढ़ता है, उतना हमें व्यवसाय में हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा समय हमें देना पड़ता है और सत्संग के आश्रय से और सत्संग का बल घटता है। ये सत्संग का आश्रय करने वाला परिणामों से और सत्संग में जाने की रुचि बल भंग हो जाता है, फिर असत्संग सुहाता नहीं है। क्या होता है कि असत्संग फिर सुहाता नहीं है, तो हमको फालतू की बातों में रस नहीं है। जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं जहां सत्संग नहीं होता है, वहां कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो यह मैं और तू ये सब चालू हो जाता है। मैंने अनेक प्रकार की री कथाएं चालू हो जाती है, उसमें रुचि नहीं लेना, उसमें आत्मा का अकल्याण है, उसमें रुचि लेना चाहिए नहीं। और सत्संग का आश्रय करना, आश्रय करना माने क्या कि हमारे आत्मकल्याण का एक आधारभूत प्रसंग है, इस भावना से सत्संग की उपासना करना, सर्वार्पण बुद्धि से सत्संग की उपासना करना, और सत्पुरुष मिले तो उसकी आज्ञाकारिता में रह करके सत्संग की उपासना करना। सत्संग के आश्रय से असत्संग का बल बढ़ता है, तो असत्संग में जाने का जो विचार बल है वो टूट जाएगा। असत्संग का बल घटने से आत्मविचार होने का अवकाश प्राप्त होता है, और जब असत्संग का विचार बल टूट जाने से, विचार तो चालू ही रहेगा लेकिन आत्मकल्याण के विचार होने का वहां विशेष अवकाश प्राप्त हो जाएगा। वरना हमें फुर्सत नहीं है, जिसको आरंभ परिग्रह ज्यादा है उनको फुर्सत नहीं है, पर जिसको फुर्सत नहीं है उनकी मानसिक भूमिका में आत्मकल्याण के विचार करने की जगह ही नहीं होती है। देखिए संसार की हालत कैसी है कि जिसके पास जितने भी संयोग है पूर्व प्रारब्ध के अनुसार होते हैं, और उसमें बदागति होती है वो भी प्रारब्ध के अनुसार होती है, अक्कल होशियारी के अनुसार नहीं होती है, फिर भी संसार